विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ओर से कोरोना से हुई मौतों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार भारत में इस संक्रमण के चलते 47 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये एक ऐसा अनुमान है जो सरकारी आंकड़ों से मेल नहीं खाता। गुरुवार को जारी इस रिपोर्ट से सरकार इत्तेफाक भी नहीं रखती। भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी है। सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने WHO द्वारा आंकड़ों को जुटाने के लिए अपनाई गई प्रणाली पर सवाल उठाया है। उल्टे सरकार का दावा है कि कोरोना प्रबंधन को लेकर उन्होंने शानदार काम किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए राज्य सरकार की भी तारीफ की।
आज दुनिया की स्थिति हम देखें, कई देश में अभी भी लॉकडाउन है, कई देश की इकोनॉमी अभी झोंका खा रही है, कई देश में केस अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने थर्ड वेव में बेस्ट मैनेजमेंट किया, केस को आगे बढ़ते हुए रोका, कैजुअलिटी भी रोकी और आज हम कोविड को नियंत्रित कर पाए हैं। ये हमारा ज्वाइंट एफर्ट है, सामूहिक एफर्ट है और होलिस्टिक अप्रोच का परिणाम है।
दिल्ली सरकार का कहना है कि वह फ्री में बिजली सिर्फ उन्हीं लोगों को देगी जो इसे चाहते हैं। 1 अक्टूबर के बाद मुफ्त बिजली योजना पर संशोधन करने जा रही सरकार तब मांग करने वाले लोगों को ही मुफ्त में बिजली मुहैया कराएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं,
बीच बीच में कई लोगों के मेरे पास सुझाव आते हैं, कई लोगों की चिट्ठियां आती हैं, कई लोगों से जब मैं मिलता हूं वो कहते हैं कि सर अच्छी बात है आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो हैं वो सक्षम हैं, हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते, आप इस पैसे को कहीं स्कूल अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब हमने तय किया कि हम ये ऑप्शन देंगे, हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए, अगर वो कहेगा हाँ चाहिए तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो हम उनको नहीं देंगे। तो ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा और 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच गुरुवार को जमकर बयानबाजी हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। गुरुवार को पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने सिलीगुड़ी में एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान नागरिकता संशोधन कानून को लेकर ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया।
आपको यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला।
वही ममता बनर्जी ने गृह मंत्रालय पर देश विरोधी काम करने का आरोप लगाया है।
एक दुख की बात है, दुर्भाग्यों की बात है, एक कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने देश को टुकड़ा करने चाहता है, हम देश को एकता बनाने के लिए एकता करके रखने की चाहते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक हमारा वक्तव्य है और उसका वक्तव्य है सब तोड़ दो, फाट दो, वाक जला दो, कोई जो
अमित शाह ने राज्य की अर्थव्यवस्था और लचर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी ममता सरकार पर खूब हमला बोला। खासतौर पर घुसपैठ की समस्या के लिए ममता बनर्जी सरकार को अमित शाह ने दोषी ठहराया। और अब चर्चा जम्मू कश्मीर की, जहां चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने के लिए गठित परिसीमन आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार अब कुल विधानसभा की 90 सीटें होंगी, जो पहले के मुकाबले 7 अधिक है। जम्मू क्षेत्र को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, अब यहां से 37 की बजाय 43 विधायक चुने जाएंगे, जबकि कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 46 की बजाय अब 47 होंगी। परिसीमन रिपोर्ट से भाजपा खुश है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना इस रिपोर्ट को लेकर कहते हैं,
जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन को लेकर परिसीमन आयोग ने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट परिसीमन आयोग के सदस्यों ने तैयार की है, जिसके लिए परिसीमन आयोग बधाई का पात्र है, उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट में दो नॉमिनेटेड एमएलएस जो कश्मीरी पंडित हैं, जो विस्थापन का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए रखने की सिफारिश की है।
भाजपा के अलावा राज्य की अन्य पार्टियों ने इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि परिसीमन के जरिए भाजपा अपना एजेंडा लागू कर रही है। केंद्र की भाजपा सरकार से नाराजगी अन्य मुद्दों को लेकर भी है। धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जम्मू कश्मीर की पार्टियां केंद्र सरकार के रवैये से खुश नजर नहीं आ रही हैं। पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इस बारे में कहती हैं,
1947 जैसे हालात बनाए जा रहे हैं, जो मैं समझती हूँ इस मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका साझा मुल्क है। इसकी अपनी खूबसूरती इसी भाईचारे में, अगर इसको बीजेपी अपने एजेंडे पे चलाएगी, यहाँ के आईन पे नहीं चलाएगी जो इस मुल्क का आईन है, तो मुझे लगता है कि इसमें आने वाले वक्त में, आज तो हिंदू को लगता है कि हम सेफ हैं, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, मगर एक वक्त आएगा कि कोई भी इस मुल्क में सेफ नहीं रहे।
और चलते चलते बात राजस्थान की, जहां जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा सांप्रदायिक तनाव की चपेट में है। यहां कुछ नकाबपोशों ने दो लोगों पर हमला कर दिया, इसके बाद से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जिले के पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताते हैं,
भीलवाड़ा वासियों से अपील करना चाहूंगा कि जो अफवाहें फैलाई जा रही है उन पर ध्यान नहीं दें। जो कृत्य किया है गंभीर है और हमारे हाथ के नजदीक है, बहुत जल्दी हम उनको पकड़ लेंगे। शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखें, हमारा सहयोग करें।
जोधपुर की घटना से सबक लेते हुए राज्य सरकार और प्रशासन ने यहां मुस्तैदी दिखाते हुए स्थिति को जल्द ही काबू में ले लिया है। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवा पर यहां रोक लगा दी गई है। इस बीच जोधपुर की स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।